ओम शांति। बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, और स्वराज्य अधिकारी के लिए बाबा कहते कि आपकी कर्मेंद्रियों पर अधिकार हो। और फिर बाबा क्लियर करते उस बात को कि आप कहते हैं ना कि ये शरीर मेरा है, मन बुद्धि मेरी है, इसका अर्थ है कि कभी नहीं कहते कि मन बुद्धि मैं हूं, मेरा है। तो मैं और मेरा, यह बात तो समझ में आता है बहुत अच्छी तरह, और बाबा इसी तरह से ही समझाते हैं। समझाने की विधि भी यही है कि कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि जो भी सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो आपकी है, तो आप मालिक हो और वो आपसे अलग है। और इस बात पर ही हमारी चर्चा अभी चल रही है कल से। लेकिन गहरे में कुछ इतना सरल और सहज नहीं है। मैं और मेरा में अंतर स्थूल पदार्थ में तो हमें दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म में वो अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। तो मेरा मैं की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो मेरा है वो भी मैं का ही स्वरूप धारण कर लेता है हमारे जीवन में सवेरे से शाम तक। तो एक तो मार्ग में ये कठिनाई है कि मेरा जितने भी है, जैसे मान लो कहते कि मेरा पुत्र, अब पुत्र तो बाप और माँ से है ना, लेकिन यदि बच्चा शरीर छोड़ दिया तो अब माँ माँ है, या यदि माँ शरीर छोड़ दिया या बाप शरीर छोड़ दिया या दोनों शरीर छोड़ दिया तो अब वो बेटा है किसी का बेटा नहीं है, अब वो है ही नहीं। तो ये पूरे सृष्टि में आप देखेंगे कि मेरा जितना भी है वो सब मैं का ही विस्तार है, और उसको हम मैं समझते हैं। और बहुत सारे मैं के भिन्न भिन्न स्वरूपों पर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कठिनाई जो असली है अंदर वो क्या है। ऊपर से तो हमने समझ लिया कि मन बुद्धि संस्कार हमारी है और मैं आत्मा हूं, लेकिन वह बात प्रैक्टिकल में क्यों नहीं हो रहा है। एक घटना से शुरू करते हैं। कजाकिस्तान में एक बार जॉर्ज गुर्जीएफ, जो रशियन मास्टर्स था जो जागृति की ट्रेनिंग देता था लोगों को, जॉर्ज गुर्जीएफ रशियन था कॉक्सियन, तो उसकी शिक्षा होती थी लोगों को जागृत कैसे करना है, बहुत फेमस था। तो वो जब कजाकिस्तान गया एक बार तो देखा कजाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, तो वहाँ कुछ कबीलाई जगह पर जब वो गया तो उसने देखा कि विचित्र बात देखी, वहाँ देखा छोटे छोटे बच्चे, उसके चूंकि माँ को काम करने जाना पड़ता था, गरीबी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, माँ को बाप को काम करने पर जाना पड़ता था, तो क्या करता था अपने बच्चों के आगे ना खड़िया से लकीर खींच देता था गोल गोल, और बच्चे को कहता था कि इससे बाहर नहीं निकलना, इससे तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। और उसने देखा कि खड़िया गोल गोल खींचा हुआ है और घर में दूर दूर सब बच्चे अपने अपने खड़िए में बैठे हैं चुपचाप, ये क्या स्थिति है। तो बचपन से उसको सिखाया गया था, छोटेपन से, और उसने देखा कि चलो ये तो समझ में आ रहा है, फिर भी छोटा छोटा बच्चा है, खड़िए के अंदर कैद है, बंद है, उसे बाहर नहीं जा सकता। तो उसने एक प्रयोग किया, एक 70 साल के व्यक्ति को भी खड़िया खींच दिया उसके चारों तरफ और कहा कि अभी इसमें से बाहर नहीं निकलना, अब वो भी उसमें से बाहर नहीं निकल रहा है, ये क्या स्थिति थी। आपको यदि आपका आपके आगे खींच दे तो आप तो बाहर निकल आओगे एक मिनट में, वो नहीं बाहर निकल आ रहा था, क्योंकि बचपन से ही अवचेतन तक ये चीजें डाल दी गई थी उसके अंदर कि ये दीवार है शक्तिशाली लक्ष्मण रेखा, इसके बाहर तुम जा नहीं सकते हो। और ये वो दीवारें क्या है, वो खड़िया उसकी खींची हुई है उस बच्चों के आगे, ऐसी बात नहीं है, ये सब खड़िया हम लोगों के आगे खींची हुई है सवेरे से शाम तक, सब अपने गोल गोल खड़िए के अंदर बैठा हुआ है उस लक्ष्मण रेखा के अंदर, और ये लक्ष्मण रेखा सबकी सबके अंदर गहराई से अंदर तक अवचेतन तक चली गई है, यह है उसकी पहचान। यह है उसका बिलीफ सिस्टम्स, उसकी मान्यता, उसकी दृष्टिकोण, उसकी अवधारणा, ये सारे के सारे अपनी झूठी पहचान को लेकर के हम लोग अपने अंदर बंद हैं, कैद हैं, और उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। भले बाहर से कितना भी कहे कि अरे ये तो खड़िया है, इसे निकल जाओ बाहर, ये तो मन बुद्धि संस्कार तुम्हारी चीज है, तुम तो नहीं हो, इसके तुम मालिक हो, लेकिन अंदर कुछ भी बात बनती नहीं है, हम खड़िया से बाहर नहीं निकल पा रहे। और उसने देखा ऑस्पेंस की जॉर्ज गुरु जी अपने कि एक 70 साल के व्यक्ति को भी खींच के बाहर निकालने का प्रयास किया उसने, तो भी वो नहीं निकल रहा है। जैसे वो भैंस का बोलते हैं ना कि भैंस हो तो दरवाजे से नहीं निकल रहा है, लेकिन ये तो भैंस की तो कहानी है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल घटना घटी कजाकिस्तान की थी। तो हम लोग सवेरे से शाम तक जो उस खड़िए के अंदर बंद है, वो है क्या चीज एक्चुअल में? वो है हमारी पहचान। खाली पहचान नहीं है, वो अस्तित्वगत चीजें हो गई हमारे जीवन में, जीवन हो गया है। वो पहचान नहीं है खाली, वो जीवन हो गया है हमारे, जो झूठी पहचान जिसको हम बोलते हैं देह अभिमान कहते हैं। जैसे मान लो कि केला है, एप्पल है, जब शरीर उसे ग्रहण करता है तो अब वो शरीर में जाकर के क्या हो जाता है? केला रहता है, एप्पल रहता है, केला और एप्पल अस्तित्व बन जाता है। अच्छा, वो केला कहाँ है? पेट में है कि बाल में है कि कहाँ है? कहाँ से आप निकालोगे उसको? इतना रचपच गया है वो शरीर में कि वो शरीर ही हो गया है। अब केला या रोटी, बाहर जो जड़ चीजें थी, वो अंदर चैतन्य हो गया, अस्तित्व हो गया है। एक एक कंप्यूटर जड़ है, बाहर है, लेकिन यदि उसको कोई कुछ करता है, उसको छेड़छाड़ करता है, तो वो हमारा अस्तित्व कैसे बन जाता है? हमारे अंदर यहां लगने लगता है कि कुछ हो रहा है और हम लड़ाई झगड़े पर उतर आते है। था तो बाहर, अब वो बाहर नहीं है, वो हमारे खून में, अंदर चेतना में रच बस गया है सवेरे से शाम तक। जैसे हम शरीर से जिस चीजों को ग्रहण करते हैं वो हमारा अस्तित्व बन जाता है, ऐसे मन से भी जब हम जिन चीजों के इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय संलग्नता से चीजों को ग्रहण करते हैं, तो वो सारा का सारा हमारा एग्जिस्टेंस हो जाता, अस्तित्व हो जाता, जीवंत हो जाता है। अब नाम कोई नाम नहीं है हमारा। यदि हमारा नाम खाली होता और हम ये कह लेते कि नाम तो हमको बचपन से दिया गया है, ये तो ऊपर से है, लेवल है, मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा नहीं है कुछ। आपके खून में चला गया है ये नाम। खून में कैसे चला गया? यदि 50 लोग है और उसमें से यदि कोई बोले अशोक, तो मैं चौंक के जाकर खड़ा होऊंगा और कोई नहीं जागेगा इसमें से। अब आप देख रहे हैं अशोक शब्द क्या है, खून बन गया है जैसे। अब अशोक नाम नहीं है खाली। मैं इसीलिए इस बात को गंभीरता से ले रहा हूं कि यह अस्तित्वगत अवस्था हमारी, बाबा कहते संस्कार हो गया है, संस्कार है, अब चेतन आदतें हो गई है। तो जो भी चीज हम ग्रहण करते हैं सवेरे से शाम तक, आप सवेरे शाम तक देखें चीजों को, बुद्धि के माध्यम से, विचार के माध्यम से, भावना के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, चारों तरफ संसार में हम कर्म करते हैं और प्रतिक्रिया और क्रियाएं होती रहती है। इस इंद्रिय संलग्नता में जिन चीजों के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, जुड़ते हैं, एक रूप होते हैं, उसकी पहचान बन जाते हैं। और उसकी जब पहचान बन जाते हैं तो वो हम हो जाते हैं। अब वो नहीं रहा, वो अब हम हो गए। किसी ने कहा कि उल्लू, किसी ने कहा कि कुत्ता, तुम कुत्ता हो। अब हम कन्फर्म है कि हम कुत्ता नहीं है, कन्फर्म 100% है बाहर से कि भाई कुत्ता दूसरा होता है, मैं दूसरा हूं। लेकिन अंदर क्या होता है? अंदर बचपन से कुत्ता एक गाली शब्द है, अपमानजनक शब्द है, और बचपन से हमारे अंदर इस बात के प्रति हमने 1,00,000 बार, 10,00,000 बार प्रतिक्रिया कर चुके हैं कि यह बुरी चीज है, इसको सहन करना अच्छा नहीं है, अपमान को सहन करने से तो बार बार दूसरा दबाएगा, इत्यादि इत्यादि जो भी बातें हैं। और वह एक झूठी पहचान के रूप में हमारे अंदर धारण कर लिया वो अपमानजनक स्थिति, और वह मैं सेकेंड के 1,000,000वें हिस्से में, चूंकि अब वो अस्तित्व का हिस्सा है, वो जैसे ही कुत्ता कहते हैं तो वो प्रकट होता। तो बाहर का ज्ञान कोई भी काम नहीं आ रहा है। और हंसने के साथ साथ गंभीरता का विषय है ये, काम नहीं आ रहा है कुछ भी। इसलिए इसलिए चाहे हम 10 वर्ष से चल रहे हैं कि 50 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं, आज भी कोई उल्टा बोलता है तो हम प्रतिक्रिया करते ही करते, कन्फर्म है पक्का। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज है जो काम नहीं कर रही है। तो हम कहते हैं कि ये गलती हो गई, बेहोशी में हो गई हमारे से, बेहोशी में हमने ये काम कर दिया। हम सोच नहीं रहे, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाए, अब बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन हमने आज चांटा मार दिया, ये काम अच्छा नहीं किया, बेहोशी में ये काम हो गया। लेकिन आप बेहोशी में काम नहीं करते हैं, होश की एक किरण हमेशा विद्यमान रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। सबसे बड़ी बात, बेहोशी से पहले इस बात को देखें कि इस संसार में जिस चीजों के साथ हम जुड़ करके इंद्रियों के माध्यम से सुख पाने की कामना से त्रस्त होकर के सुख पाते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, संकल्प और इच्छा शक्ति होती है। बिना इच्छा और संकल्प के हम संसार की तरफ यात्रा ही नहीं करते। तो इच्छा और संकल्प पहली चीज है हमारे जीवन में, उसे हम संसार में यात्रा करते हैं। और जब संसार में यात्रा करते हैं, जब बेहोशी की स्थिति होती है, हम कहते हैं कि हम बेहोश हो गए, तो वास्तव में पूरी की पूरी बेहोशी हमारी होती नहीं है। अदालत भी यदि पूरा का पूरा बेहोशी में कोई अपराध हो तो आदमी उसको, सरकार भी उसे माफ कर दे। इसलिए आप देखते हैं छोटे बच्चे को कैद नहीं होता है, इत्यादि इत्यादि जो भी बात है, क्योंकि कहते हैं सज्ञान नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, इसको समझ नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में हम बेहोश हो जाते हैं इतना कि हम उस काम को कर देते हैं और हम ये क्लेम करते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, बेहोशी में ऐसा हो गया, मैं सोचा नहीं था कि अपने बेटे को ही, और जवान हो गया, इसको एक चांटा मार दूं, लेकिन मार दिया। क्या पूरा का पूरा बेहोशी था वहां पर? यदि यदि ऐसा हो तो आप बताओ, आप भोजन खा रहे हैं, खाना खा रहे, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है, 36 प्रकार का बना है, खा रहे हैं, खाते खाते ओवरलोड हो गया, ज्यादा खाना खा लिया, अब पेट में दर्द भी हो रहा है। अब आप कहेंगे अरे अरे इतना अच्छा भोजन था कि मुझे स्वाद के बसीबूत मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैंने इतना खाना खा लिया। अब आप बताओ एक चीज, जब आप स्वीकृति में हां करते हैं या निर्णय लेते हैं, तब क्या आपकी स्वीकृति हमेशा हां में होती है या ना में होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे, खाना खा रहे और ज्यादा खाना खा रहे, ज्यादा खाना स्वाद के बसीबूत, उस समय यदि आप बेहोश हैं तो आप ना भी तो कर सकते थे कि ना नहीं खाना है। नहीं, लेकिन आप इतना बेहोश नहीं होते, होश की एक किरण आपकी अपने फेवर में हमेशा बनी ही रहती है, बेहोश पूरा नहीं होते हैं। स्वीकृति में हां और ना हो सकता था, लेकिन हमेशा हमारी स्वीकृति में उसके फेवर में हां ही होता है, ना तो हम बेहोश हैं। लेकिन हम क्या दलील देते हैं कि हमसे गलती हो गई, ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन इसी होश में दोष है और इसी दोष में होश के कारण प्रायश्चित भी है। यदि आपने ज्यादा भोजन खा लिया तो प्रायश्चित क्या है? उपवास, उपवास के द्वारा आपको उसको सेटल करते हैं। तो दोष, हाँ हाजमोला भी है, हाजमोला, लेकिन एक सीमा के बाद काम नहीं करता, फिर कहते हैं ना हाजमोला भी काम नहीं करता, चार दिन के बाद हाजमोला भी काम नहीं करता। हाजमोला भी काम आपके अंदर कुछ कर रहा है तो हाजमोला मदद करता है उसको, अदरवाइज बाद में हाजमोला भी हैंड्स अप कर देता, कहता अभी मेरे से नहीं होने वाला है। तो ये बेहोशी की स्थिति जो हमारी जो बनती है, तो वास्तव में यही खुशी की भी बात है, उमंग उत्साह की बात है कि हमारे पास संकल्प की और इच्छा की एक किरण सतत विद्यमान है, और वह जो किरण है वही उमंग उत्साह ला करके रूपांतरण हमारे जीवन में ला सकता है। तो ये जो अहम है, जो चीजों से जाकर के चिटकता है और उसका स्वरूप धारण कर लेता है, इसके प्रति यदि अब और दुखी होता है, तो आपके हम लोगों के जीवन में भी अनुभव है, चाहे महान आत्मों के दादियों के जीवन में अनुभव है। वो कहते हैं कि संसार में दुखी नहीं है, लेकिन सुख शांति आनंद प्रेम भी है, सामान्य रूप से लोग क्या कहते हैं, दुख है, अशांति है, इंद्रियों के साथ जुड़ करके हम जो भी अनुभव करते हैं उसमें दुख मिलता है, अधूरेपन का बोध होता है। लेकिन ऋषि कहते हैं नहीं, सुख शांति आनंद प्रेम भी है जीवन में। इसका अर्थ है कि अहम क्या सत्य से, उस सुख से जुड़ सकता है? लेकिन सत्य से, सत्य तो एक ही होता है, उससे जुड़ नहीं सकता। लेकिन अहम अपने स्वरूप को वापस चेंज कर सकता है, क्योंकि उसका ही अपना स्वरूप सत्य स्वरूप है। वो अपने ही स्वरूप से जुड़ करके, जो आनंद स्वरूप है उसका, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है, उससे जुड़ करके उस अपनी अविनाशी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो हम यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से ये चीज बता रहे हैं कि अहम हमारे अस्तित्वगत जीवन का हिस्सा हो गया है, इसलिए उस मैं के स्वरूप को समझने के लिए, उसको जानने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा, यानी साधना को और गहराई में हमें ले जाना पड़ेगा। अब हम आज मैं के विस्तार को थोड़ा सा देखते हैं। मैं के रूप हजार है ना, तो और भी मैं का बहुत सारा विस्तार है। मैं ही मेरा नहीं है, मेरा भी मैं का स्वरूप धारण कर लेता है। एक चीन में एक कहानी थी, भिक्षु नागसेन नाम का एक सन्यासी राजा मिलिंद के दरबार में आया। राजा मिलिंद ने भिक्षु नागसेन को स्वागत किया और हार मालाएं पहनाते हुए कहा, भिक्षु नागसेन आपका स्वागत है। नागसेन ने कहा कि लेकिन यहां नागसेन नाम का कोई भी आदमी नहीं है। राजा चौंका, राजा कहा कि अच्छा फिर आप कौन है? कहा मैं कौन हूं राजन, मैं भिक्षु नागसेन नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं हूं। कहा कि जिस रथ से मैं अभी उतरा हूं, तुमने जो रथ भेजा था उस रथ में से घोड़े को हटा दो, घोड़े को हटा दिया, चक्के को हटा दो, और धीरे 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 रथ के सभी हिस्सों को अलग कर दिया गया। भिक्षु ने कहा कि राजन ये रथ कहां है? रथ तो है नहीं, रथ तो जोर था। हमारे जीवन में जितनी भी मैं की पहचान है सब जोर है खाली, चारों तरफ से। यदि आप उस जोर को हटा दो तो मैं की सब पहचानें हट जाएगी। मैं क्या है? बिलीफ सिस्टम है, मान्यता है। मान्यता का क्या अर्थ होता है? मान के चलना है नहीं चीजें जो दिखाई दे रही है। जैसे मान लो कि पेंसिल को आपने ग्लास में डाल दिया, पानी के ग्लास में, तो तिरछी दिखती है, हो नहीं जाती है वो तिरछी। अंधेरे में सांप, रस्सी और सांप का जो भ्रम पैदा होता है, वास्तव में वो रस्सी सांप होता नहीं है, लेकिन हमें लगता है। तो जो ये जो बिलीफ सिस्टम है, मान्यता है हमारे जीवन में, सवेरे से शाम तक छापों की मान्यता, नाम के छापों की मान्यता, लिंग की मान्यता, संबंध की मान्यता, देश और प्रांत की मान्यता, जाति की मान्यता, शरीर की मान्यता, ये सारी की सारी मान्यता है, मान के चलते हैं। संबंधों की मान्यता, मान लो संबंधों में, अभी हम भट्टी प्रोग्राम में जाते तो एक कई बार क्या होता है, बड़ा प्रैक्टिकल होता है, बहुएं भी चलती है ज्ञान में, सास भी चलती है, सारा परिवार ही ज्ञान में चलता रहता है। फिर जो बहुएं हैं वो आती है, कहते भाई साहब, और सास भी सामने है, हंसती है आपस में, कहती हैं कि हमारी अम्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, पुरुषार्थ भी करती है, सेवा भी करती है, रेगुलर मुरली भी सुनती हैं, लेकिन जब घर में जाती है ना तो वापस सास की सीट पर बैठ जाती है, सब भूल भाल जाती है, फिर से उस पोजीशन में हम चले जाते हैं, सास की सीट पर बैठ जाते हैं। तो यह है संबंधों की मान्यता, मान के चलते हैं, है नहीं लेकिन। अब आप देखो यहां पर मधुबन में गुजराती कढ़ी बनती है, देखें ना मीठा, लेकिन अभी नहीं, पहले बहुत होता था, क्योंकि मधुबन में पंजाब वाले भी लोग आते थे, तो पंजाब को यदि गुजराती कढ़ी यदि उसने कटोरी में डाल लिया ना, ऐसे ये क्या डाल दिया, तो गुजराती पसंद नहीं है। तो आप देखेंगे कि बिलीफ सिस्टम में जो मान्यता है हमारी संबंधों की, चाहे प्रांत की मान्यता कि पंजाबी है गुजराती है, यही खाली नहीं है लेकिन हर एक मान्यता वाला जो मैं होता है ना उसकी मन बुद्धि भी बिल्कुल अलग अलग ढंग से कार्य करती है। अब स्वाद के संबंध में उसकी मन बुद्धि अलग ढंग से कार्य करती है लेकिन यदि वो किसी पद और पोजिशन पर बैठा है तो उस समय उसकी मन बुद्धि अलग ढंग से कार्य करती है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है नहीं, हर एक मैं की अपनी अपनी अलग तरह की ट्रेंड मन बुद्धि और संस्कार होती है, उसी पैटर्न में वो काम करता है सवेरे से शाम तक बिलीफ सिस्टम्स में। तो बिलीफ सिस्टम मान्यता सवेरे से शाम तक आकार ग्रहण करती रहती है हमारे जीवन में। नहीं नहीं हाँ वही मैं ये इधर देखा मैंने घड़ी उधर दिखाई नहीं दिया। आप देखेंगे मैं के इस स्वरूप को आपने देखा कि ये बिलीफ सिस्टम है, मान्यता, मान्यता प्रांत की मान्यता हो सकती है, देश की, जो भी मान्यताएं हैं हमारी, लिंग की है, जाति की है, बिलीफ सिस्टम मान्यता के साथ आप देखेंगे कि मैं कैसे आकार ग्रहण करता है सवेरे से शाम तक हमारे अंदर, हमारे अंदर। अच्छा कैसे हम कहते हैं कि आपका नाम नहीं बदलता, आपका चेहरा नहीं बदलता तो आपको लगता है मैं एक ही हूं, आईने में जाते हैं तो प्रतिदिन चेहरा वही रहता है, नाम भी वही बदलता, संबंध में भी बदलाव नहीं आता, फिर अंदर क्या है जो बदलता है सवेरे शाम तक? अंदर पसंद और नापसंद, अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगता है, ये सवेरे से शाम तक गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, हजारों मैं का रूप इस तरह से बनता रहता है, तो ये भ्रांति बनी रहती है। अभी आप देखो कभी कभी हम शरीर को मैं कहते, कभी हम विचार को मैं कहते, कभी हम भावना को मैं कहते, कभी हम शरीर को मैं कहते, ये तो समझ में आया, कभी हम विचार को मैं कहते, कभी हम भावना को मैं कहते। आपको पता है सारे दिन में 52,000 थॉट्स चलते हैं और कुछ तो कार्य के थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, कुछ अलग तरह के विचार होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जिस विचार के साथ आप जुड़ करके आकार ग्रहण करते हैं। तो आज आप सारा दिन चेक करेंगे कि सवेरे से शाम तक जो विचार चल रहे हैं उसके साथ चेतना जुड़ती है, उसका आकार ग्रहण करती है और उसके कारण प्रतिक्रिया करती है। तो सवेरे से शाम तक कितने मैं का स्वरूप धारण होता है हमारे अंदर, एक एक विचार मैं का आकार ग्रहण, चलते चलते आप 10 मिनट में देखेंगे कि हमारे अंदर कितना मैं बदल चुका है। तो बताओ आत्मा का मैं कहां कहीं स्थान है, इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक घंटा चार्ट लिखो, माना हर एक घंटा चार्ट लिखने का अर्थ है कि हर एक घंटा, अब हम हर एक घंटा माना 50 मिनट 60 मिनट नहीं, हर एक 5-10 मिनट पर चेक करना पड़े कि हर एक 5-10 मिनट में कैसे मैं आकृतियां ग्रहण करती है। तो विचार के तल पर और भावना के तल पर, भावना के तल पर तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि भावना मैं का आकार ग्रहण कर लेती है, कभी भी अपमानजनक शब्द से कैसे मैं का आकार ग्रहण करती है, इमोशन कैसे इमीडिएट जंप करता है और आपको संभलने का मौका भी नहीं देता कि आप आत्मा है, आनंद स्वरूप है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। भले 2 घंटा पहले जप करके अभी अभी आए हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति और सिचुएशन बनता है वो चेतना मास्टर सर्वशक्तिमान अभी हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं बना है। हमारे अस्तित्व का हिस्सा क्या है, जिसको हम जीवन कहते हैं, श्वास कहते हैं, वो अब चेतन में झूठे मैं का जो स्वरूप है वो अस्तित्व का हिस्सा है अभी, इसलिए उसको प्रकट होने में ये ऊपर रह जाती है और वो चीजें अंदर से बाहर आ जाती है 1 मिनट में। तो इमोशन के प्रति यदि आप जागृत होंगे, इमोशन में भी हम स्वराज्य रहस्य में कल चर्चा करेंगे कि कामना और भावना 2 बिल्कुल अलग तरह की चीज है, जबकि हम इस दोनों को एक ही चीज समझते हैं। नॉर्मली हम लोग समझते हैं शुभकामना शुभ भावना, शुभकामना शुभ भावना शुभ, बट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये दोनों ही अलग तरह की चीजें हैं। तो इमोशंस कैसे हमारे अंदर, कामनात्मक सत्ता कैसे सवेरे से शाम तक मैं के रूप में सक्रिय रह करके कार्य करती है, क्योंकि यह कामना ही इच्छा है, इच्छा की शक्ति है और इच्छा की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति, इसी को प्राण शक्ति हम बोलते हैं, और यह शक्ति सभी आत्माओं में भी है और ईश्वर में भी है शक्ति। तभी तो बाबा कहते ईश्वर को संकल्प हुआ इस सृष्टि पर आने का और वो इस सृष्टि पर आया। तो यह जो प्राण शक्ति है, कामना की शक्ति है, यह बिल्कुल अलग ढंग से कार्य करती है। तो कैसे कामना मैं का आकार ग्रहण करती है सवेरे से शाम तक, स्मृति मैं का आकार ग्रहण करती है सवेरे से शाम तक। फॉर एग्जाम्पल, कैसे छवियों से मुक्त होकर के हम सवेरे से शाम तक, हमारे अंदर कोई ना कोई इमेज होता है जिसको हम दृष्टिकोण बोलते हैं, छवियों के माध्यम से हम चीजों को देखते हैं, छवियों से मुक्त होकर के हम नहीं देखते हैं। यानी मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के क्यों नहीं संसार को देखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी छवियां हैं, इमेजेस है, और उस छवियों के साथ हमारी एक रूपता की स्थिति इतनी है कि हम उन छवियों के बिना देख ही नहीं सकते। इसलिए कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है तो कहते अरे मैं तुमको तो 10 बरस से जानता हूं। यानी 10 बरस पहले जो घटना घटी थी उसकी एक छवि कि ये आदमी अच्छा नहीं है, उस वो छवि हमारे अंदर कैद है और उस छवि के माध्यम से हम उसे देख रहे हैं। 10 बरस में तो बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन हम छवि में ट्रैप्ड हैं। हम सभी लोग सवेरे से शाम तक ट्रैप्ड हैं, कैद हैं, बंद हैं अपनी छवियों में, अपने दृष्टिकोण से, और उनके माध्यम से ही हम लोगों के साथ मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, और उसके माध्यम से लोगों के साथ मिलते नहीं, अपने अंतर जगत में भी उसी के माध्यम से विचरण करते रहते हैं, उसी के माध्यम से प्रतिक्रिया करते हैं। बाहर का जगत तो फिर भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन अंतर के जगत में हमारी सारी की सारा विचरण जो है ना वो वही होता है। एक फॉर एग्जाम्पल, एक महिला मॉल में जाती है, सब्जी मंडी में, वहाँ कुछ खरीदने जाती, वहाँ कोई आदमी उसे मिल जाता है जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, बुरा व्यवहार करता है। तो ज्ञान में चलती है माताएं, वो सोचती कि चलो आई गई, बात पूरी हुई, छोड़ दिया, माफ कर दिया, वापस आ गए। वैसे छवि एक बार में नहीं बनता है, आप घरों में देखेंगे चाहे समाज में देखेंगे, एक आदमी एक बार बुरा व्यवहार किया फिर हम उसे माफ भी करते हैं, दूसरी बार बुरा व्यवहार किया फिर भी हम उसे माफ कर देते हैं। जब बहुत बार ऐसा होता है तब अंदर उसके लिए एक छवि का निर्माण होता है, 2 दिन 4 दिन में, 2 बार 4 बार में नहीं होता है। और जितना नजदीकी संबंध उतना छवि निर्माण में बहुत टाइम लगता है। जैसे बेटे के लिए एक छवि बनना और एक बाहर वाले के लिए छवि बनाना, दोनों की छवि बनाने में अंतर, एक के लिए जो अंदर जो छवि बनती है वो बहुत लंबा समय लेती है बनने में, लेकिन हर एक के अंदर वो सब छवियां हैं सवेरे से शाम तक। और हम उन्हीं उन्हीं स्मृतियों के माध्यम, छवि माना स्मृति, छाप जिसको बोलते हैं, एक तो होता है कि कोई चीज का इंप्रेशन आ जाए, एक होता है छाप, छाप माना पक्का, अब उसको मिटाओ तो भी नहीं मिटता। तो वो जो छाप है, वो जो स्मृति है। तो महिला गई, आई गई, बात पूरी हो गई, दूसरे दिन फिर वो मॉल गई और फिर वो आदमी दिखा और उस दिन भी कुछ ऐसा ही अच्छा व्यवहार नहीं किया उसने, वो महिला वापस आ गई। 1 महीने के बाद फिर उस मॉल में गई और फिर वही आदमी, और वो आदमी दूर दिखा उसको उस दिन, और वो जानबूझ के उसके नज़दीक आ रहा है। आज तो उसने सोचा कि आज तो मुट्ठी बंध गई उसकी, आज तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, 2 बार मैंने छोड़ दिया, ये लुच्चा लफंगा आदमी, आज तो मैं इसको ठीक करके रहूंगा। अब आप देखिए, वो व्यक्ति हो सकता है कि वो व्यक्ति आ रहा हो अपनी गलती की माफी के लिए कि 2 दिन उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो जाकर के इसे हम सॉरी कर लेते हैं, लेकिन माता तो उसका चेहरा भी नहीं देख रहा है, पढ़ने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब भी सोच विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर एक छवि लुच्चे लफंगे की क्लियर है, अब उसके माध्यम से वो उसको देख रहा। तो स्मृतियों के माध्यम से हम चीजों को जब देखते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है, और ये स्मृतियां मैं का निर्माण करती है सवेरे से शाम तक। तो मैं कैसे अपने भिन्न भिन्न रूपों में, हमारे पास मैं को हम और किस किस रूपों में देखते हैं, कभी हम शरीर को मैं कहते, एक घटना से देखते हैं कि मैं बगीचे में गया, जो एक आदमी कह रहा है कि मैं बगीचे में गया, वहाँ मेरा पैर फिसल गया, मेरे घुटने में चोट लगी, मुझे चिंता होने लगी, मेरा विचार चलने लगा कि ट्रीटमेंट कहाँ कराऊँगा, हॉस्पिटल जाना है कैसे, मुझे चिंता होने लगी कि कि कल ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, बहुत आर्थिक संकट आ जाएगा मेरे बिना गए हुए, क्योंकि मैं ही सारा बैलेंस शीट देख रहा हूं, यदि ऐसा नहीं हो तो क्या हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब आप देखो, अब आप साक्षी होकर देखिए उस स्टेटमेंट को। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं बगीचे में गया, अब वो पूरे शरीर को मैं कह रहा है उस समय, फिर कहता है मेरे घुटने में चोट लगी और मेरा विचार चलने लगा। अब शरीर को, घुटने को मैं कहा, और उसके थोड़ी देर के बाद अब वो विचार को मैं कह रहा है, मुझे विचार, मुझे संकल्प चलने लगा। चल तो विचार रहा है, क्या विचार से अपने को अलग करके देख रहा है? बाबा कहते कि तुम विचार को जानने वाले हो, मन बुद्धि को जानने वाले हो, तो ये विचार है, ये तुम नहीं हो, ऐसा होता है? ऐसा होता है, क्योंकि विचार के साथ इतनी एक रूपता है, वो हम स्वराज रहस्य में कल चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है वास्तव में, विचार के साथ हम कैसे काम करते हैं और भावना के साथ कैसे काम करते हैं और शरीर के साथ कैसे काम करते हैं, तो वो हम कल चर्चा करेंगे। तो वहां वो विचार को मैं कह रहा, और थोड़ी देर के बाद उसे चिंता होने लगी कि कल क्या होगा ऑफिस में, यदि वो नहीं जाएगा तो बहुत बड़े आर्थिक संकट में स्थित हो जाएगी। अब वो उस समय भावना को मैं कह रहा है। आप देख रहे हैं कि सवेरे से शाम तक हमारे जीवन में कैसा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। कभी हम शरीर को मैं कहते, कभी विचार को मैं कहते, कभी भावना को मैं कहते, कभी हम स्मृति को मैं कहते। सवेरे से शाम तक ये दुर्घटनाएं घटती रहती है हमारे जीवन में, ये मैं के हजार स्वरूप हैं। तो हमारे जीवन में मैं और भी रूपों में सक्रिय रहता है, एक तो साधक मैं है और एक बाधक मैं है। साधक मैं हम लोगों के जीवन में विकसित हुआ है, संकल्प की साधना हम पुरुषार्थ करते हैं, बहुत तरह से पुरुषार्थ करते हैं, शुरू शुरू में ज्ञान में आए फॉर एग्जांपल, तो एक अन्न की शुद्धि की बात थी और बाहर का सारा भोजन छोड़ना बड़ा मुश्किल, धीरे धीरे हम साधते हैं, अन्न की शुद्धि होती है हमारी, ब्रह्मचर्य की शुद्धि होती है, ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, फिर मुरली में रेगुलर हम बनते हैं। तो ये सब साधक मैं है हमारे अंदर, एक छोटा छोटा मैं का जो समूह, जो पूरा का पूरा ही समूह जो बाधक मैं था पूरी दुनिया में, जब हम ज्ञान में आते हैं तो साधक मैं में थोड़ा थोड़ा ग्रुप एक एक जुटना, पहले भोजन की शुद्धि होने लगती है, बहन जी पूछती है हाँ मैंने भोजन तो शुद्ध कर लिया, अब मैं बाजार का नहीं खाता हूं, अब साधक मैं भोजन वाला तो जुड़ गया है उसके बाद, फिर ब्रह्मचर्य वाला जुड़ जाता है, फिर रेगुलर मुरली वाला जुड़ जाता है। तो आप समझ रहे हैं ये हमारे अंदर साधक मैं है, और हमारे अंदर दूसरा मैं है जो जबरदस्त है, बाधक मैं है सवेरे से शाम तक। और उस बाधक मैं भी दो तीन तरह का मैं है जो बहुत सक्रिय है सवेरे से शाम तक। एक है आलस और अलबेला से भरपूर मैं, कोई नृप हो हमें कहानी, चेरी छाइब की हो अब रानी, वो मंथरा ने कहा ना कैकेयी को कि अरे तुम मेरे को क्यों बोल रही हो, कोई भी राजा हो तो भरत राजा हो कि राम राजा हो, मेरे को क्या है, मैं तो यही दासी ही रहूंगी ना। यहां भी हम लोग कहते हैं, कह देते हैं छोरो सत्यों की बात है, अब जिसको 108 में जाना है जाए, हमको तो अपने ढंग से रहना है। बाबा कहते हैं डबल डनलप के गद्दे को, आलस और अलबेलेपन के डबल डनलप के गद्दे पर आराम से लेट जाते हैं, और उसमें आलस और अलबेलापन की हमारी वेरी प्रैक्टिकल जो स्थिति है वो तो बहुत बार मैच के समय में होती है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और उसी दिन 5:30 बजे इंटरनेशनल योग हो और लास्ट ओवर चल रहा हो तो बड़ा मुश्किल है। तब तो हम दलील देते हैं कि बाबा कहीं चला थोड़े गया है, जाकर थोड़ी देर के बाद योग कर लेंगे ना, इसमें क्या है, हम थोड़ा 5:30 के बदले 7:30 बजे 1 घंटा और ज्यादा योग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कर लेंगे, उसमें तो क्या जाता। तो ये है आलसी और बेपरवाह मैं हमारे अंदर, हमारे अंदर विध्वंसात्मक और नकारात्मक मैं का भी स्वरूप है। नकारात्मक मैं के स्वरूप में कुछ तो विध्वंसात्मक भी है, कभी कभी हमें गुस्सा आता है, इतना आता है कि आंखें लाल पीली तो हो ही जाती है, वो तो छोड़ो, कान भी लाल हो जाता है। हाँ वही दूसरे का कान लाल हो जाता है। अभी क्या हुआ, एक भाई था, उसने बड़े रोमांटिक अंदाज में एक कमल का फूल एक बहन को दिया, उस बहन ने एक चाटा उसके गाल पर जोर से, कान पर लगा दी, कान लाल होने। उसने कहा लेकिन मैं तो आपको कमल का फूल दिया हूं ये प्रतीक के लिए कि कमल समान जीवन जीना चाहिए। नहीं नहीं वो नहीं, ये दूसरी कहानी है। उसने कहा कि कमल का फूल आपको दिया कि कमल समान जीवन बनना है, इसके प्रतीक के लिए मैंने आपको ये फूल दिया। कहा मैंने भी तो आपको प्रतीक के लिए ही तो ये दिया है, कि कमल समान जीवन कैसे बनेगा, जब तक सहनशील नहीं बनेंगे, जब तक शांत नहीं बनेंगे। वैसे 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 मुझे लगता है, वैसे मुझे लगता है कि आप भाजपा से हैं शायद, क्योंकि क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं, सच्ची बात बताऊं तो। हास्य और विनोद का भी अपना स्थान है हमारे जीवन में। तो मैं के बहुत सारे स्वरूप हैं हमारे जीवन में, यदि उन सभी स्वरूपों पर यदि हम ध्यान से गहराई से विचार करें तो ये सारा का सारा अस्तित्वगत हिस्सा हो गया, जिसको बाबा कहते माया, जिसको कहते कि माया मासी है, मासी के रूप में। मासी के रूप में का अर्थ है कि इतना प्रिय है, इतना प्रिय है। सबको मासी का अनुभव नहीं भी हुआ होगा, हमको तो हुआ है, बहुत प्यारी होती है, माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है, और हमारी तो बहुत मासी थी। तो प्यार करती है का अर्थ है कि हमें विस्मृति स्वरूप की स्थिति में ले आती है। तो सीरियसली हम सभी को बहुत जोर से बीसों नाखून का जोर लगा करके साधना करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ इस स्वरूप में स्थित होने के लिए। कल हम फिर स्वराज रहस्य पर शुरू करेंगे थोड़ी सी चर्चा। ओम शांति।